के संग से या भक्तों के संग में ऐसे हो गए जगत को शुद्ध करने वाले। कृष्ण ने स्वयं उनका संस्कार दास संस्कार किया और उनकी प्रशंसा की। इसलिए साधु संघ सबसे से गंभर्व अक्षरा नागा काली हरता काली यथा कृष्ण के चरण अपने पत्नियों के संग से परम भक्तमान होकर के इस भक्त आगर को कर उनकी पत्नियां बड़ी गंभर्व ब्राह्मण कुल में मथुरा के यज्ञ करने वाले ब्राह्मण लोग उनकी स्त्रियां परम भक्त थी। इन स्त्रियों के संग से इनका उद्धार हो गया। सुग्रीव जी सुग्रीव का शिखर बंदर जाति के ये हनुमान के संग से ऐसे बन गए। हनुमान जी खूब बंदर लंगूर गज गज माने हाथी वो किसके संग से अगस्त महाराज के संग से उसका उद्धार हो गया। गृद्ध ये जटायु और तुलाधर वैश्य वजन करता था ठीक से और भगवान का स्मरण करता था उसी से भगवान को पार कर दिया। भगवत भक्त के ब्याज खूब ज्ञान व्रति गोपिना ऐसा कौन है जो बिना साधु संघ के भगवान को कर गया। इसलिए साधु संघ से बढ़कर के नहीं है। श्रीमद् भागवत कहते हैं यदि कोई कृष्ण प्रेम चाहता है अपने जीवन का कल्याण साथ जाना चाहता है तो साधुओं के संग में जाए और अनकंडीशनली उनके चरणों में समर्पण करके उनकी कथाओं को सुनकर के भगवान में उनकी जो ज्ञान है वही पास स्थान है स्थिति जो त्यागी है वो त्यागी जो गृहस्थ है वो गृहस्थ जो जहां पर है वहीं से भगवान का भजन करना आरंभ करके भगवान का नाम करे। भगवान के नाम में जाति पाति का कोई प्रश्न नहीं रुपये का कोई प्रश्न नहीं पवित्र होने का कोई भी प्रश्न नहीं। जो मैं स्नान करके ही भगवान का नाम किसी चीज की इसमें बंधकता नहीं। ऐसे नाम के द्वारा ही ऐसे साधु संग में रह करके भगवान के नाम और हरि कथा के द्वारा हम कृष्ण प्रेम का भी लाभ। आज बहुत अधिक समय हो गया 11:30 के करीब बच गया इसलिए आज मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। शाम को इसके बाद में श्रीमद् भागवत की और कथाएं होंगी और रात में शायद कथाएं समाप्त हो जाएंगी। कल हम लोग बाकी औशिष्ट जो कार्य है यज्ञ इत्यादि यद्यपि एक भागवत ही यज्ञ है कभी लोगों को आकर्षण करने के लिए जिनको उतनी रुचि भागवत को विश्वास नहीं है इसलिए थोड़ा सा वो भी कर देंगे। आप लोग सभी लोग उसमें यज्ञ में आहुति देंगे जो कृष्ण प्रेम कृष्ण के प्रति हमारा प्रेम हो हमारा भागवत पढ़ना और सुनना हमारा सार्थक हो इस नियत से आकर उसमें यज्ञ में आप लोग आहुति देंगे। फिर यहां पर जैसा व्यवस्था होगी प्रसाद इत्यादि की व्यवस्था लेकर के श्रीमद् भागवत का पूजन अर्पण कर सके आरती करके फिर हम लोग समाप्त।
अच्छा महाराज जी एक ही तारीख से मतलब आप में ममता जी के यहाँ बता रहे हैं ये सभी किसी गण उपस्थित हो जाए अच्छा रहेगा। जो भी भगवान महाराज जी के नाम लेना चाहते हैं वो भी उपस्थित हों जो चार व्यंजन चार गोल करते हैं वो नाम लेने के लिए उपस्थित हो सकते हैं महाराज जी नाम दान करेंगे ये व्यवस्था की गई है। और आज जो शोभा यात्रा जाएगी शाम को अशोक नगर मित्र मंडल में जाएगी अशोक नगर जाएगा शोभा यात्रा इसलिए शोभा यात्रा में अधिक से अधिक उपस्थित हूँ। आज महाराज जी यही बता देंगे नेताजी के यहाँ बता देंगे जो भी कोई विचार विमर्श भी करना है किसी को किसी भी प्रकार की चिंता करनी है वो फिर से कर सकता है लेकिन महाराज जी हमें बतलाए क्या करना हमें
बहुत से उनकी कितनी रोने लग गई नाती इत्यादि सब राज्य के सभी लोग रोने लग गए। हिरण्य कश्यप को भी बड़ा दुख हुआ जो हमारा बड़ा भैया इतना बलवान और विष्णु ने उसे मार दिया उनको समझाने लगा समझा करके कहता है कि देखो इसलिए तुम लोग रोते मैं तुम लोगों को एक इतिहास एक कथा तुम लोगों को बताता तुम लोग ध्यान पूर्वक सुनो उनको समझा। एक राजा थे बड़े प्रभावशाली थे उनकी राइवलरी का केवल एक ही व्यक्ति था राजा यदि उनको जीतने तो वो चक्रवर्ती हो जाए इसलिए उन्होंने उसको जीतने के लिए चेष्टा की किंतु युद्ध में सैनिक मारे गए उनका सिर कट गया पैर कट गया अंत में इनकी पराजय हुई उनकी सेनाओं ने शाम को युद्ध बंद हो गया उनके शरीर को ले आए लेकर के राजभवन में रखा सभी लोग रोने जब रोने लगे उतना जोर से रोने लगे तो कोई सांत्वना देने लायक नहीं रहा। उसी समय महाराज जम 5 वर्ष का रूप धारण करके उनके घर में आए। बोले जी भाई आप लोग किस लिए रोते हैं, तुम जाओ खेलो, 5 वर्ष का बच्चा तुम नहीं समझेगा कि किस लिए रो। तो मैं तो खूब अच्छी तरह समझता, आप ही लोग नहीं समझ रहे। जैसे ये मर गए हैं, अच्छा मर गए इसलिए रो रहे हैं आप लोग, कहाँ गए कब लौटेंगे, कोलकाता गए दिल्ली गए बॉम्बे गए तो वहां से लौट करके आएंगे, कब लौटेंगे तो वहां जले गए हैं जहां से नहीं आना कभी होता, लौटना नहीं होता, कहाँ गए यहाँ से लौटा नहीं, मैं तो बिता कुएं पर सो रहे हैं। अरे कल यही तो बातचीत कर रहे थे तो ये तो इनका शरीर तो यहाँ पर पड़ा हुआ है तो इनसे बातचीत कर लो। तो अब नहीं करते, क्यों, इसमें जो आत्मा थी वो निकल गई, तो आत्मा निकल जाएगी तो निकल जाने दो, वो तो है, समझ में आ रहा है, आत्मा चली जाए जाने दो, किंतु व्यक्ति तो है तो हाँ है, इनसे बातचीत करो। तो नहीं, हम तुम लोग किसके लिए रो रहे हो, शरीर के लिए रो रहे हो ना आत्मा के लिए, शरीर के लिए यदि रो रहे हो तो यहाँ पर पड़ा हुआ, तो नहीं शरीर के लिए नहीं आत्मा के लिए रो। अच्छा आत्मा कितनी लंबी थी, गोरी थी ना काली थी, कैसा उसका रूप था, कभी देखा तो नहीं देखा, तो जिसको देखा ही नहीं उसके लिए रोने की क्या जरूरत, इसके अंदर में आत्मा है वो मैं हूं, अभी ये शरीर को ही मालूम कर रहे हैं या ये मैं हूं, और जितना पछड़ा दुख है इसीलिए गीता में जो कृष्ण ने ज्ञान दिया, भागवत में जो ज्ञान दिया, वेदों में इसी चीज को बतलाने के लिए, ये समझो कि मैं ये शरीर हूं। कभी हम लोगों का बंदरों का शरीर था, कभी भालू का शरीर था, कभी सुअर के रूप में आए, शरीर बदलता गया, अभी सुंदर मनुष्य का शरीर मिला है, यदि भजन नहीं करेगा फिर तुम्हारा ऐसे ही गति सुअर सुकर के रूप में आएगा, तब उस समय तुम इस शरीर को ही समझेगा कि मैं, अभी चेतनता उनको नहीं आई, नहीं समझे थी। मैं कहा अच्छी बात है, एक बात करो, तुम लोग सब तो रो रहे हो, मैं विश्व के सभी लोगों को बुला रहा हूं और सभी मल करके खूब जोर से रोए, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आएगा तो अकेले रोने से क्या, विश्व के लोग भी रोएंगे तो नहीं आएगा। अच्छा ये बतलाओ तो जब इनका जन्म नहीं था, शादी नहीं हुई थी, उनकी स्त्री को पूछता है तुम्हारी से उनकी शादी नहीं हुई थी तो ये तुम्हारे क्या लगते थे, विवाह से पहले पति और पत्नी में क्या संबंध होता है, कहां की कौन लड़की कहां का वो लड़का, वो तो समाज माता पिता भाई बंधु मिलकर के उसको ठीक कर देते, ये तुम लोग सारा जीवन एक साथ में रहा। अच्छा मान लिया कभी होता है जो पति आगे चला गया, कभी पत्नी आगे चली गई, आपकी मैया चली गई, पिताजी है ना, रोक नहीं सके उनको जाने से, रोक नहीं सके ना? अब वो जो चला गया निकल करके, वो कहीं पास में भी है तो आप नहीं पहचान सकते, है ना, क्योंकि उसका रूप बदल जाएगा, ऊपर का ढांचा बदल जाएगा, आत्मा तो वही रहेगी, सेम वाइन इन न्यू बोतल, शराब तो वही पुराना किंतु नए बोतल में उसको भर दिया रंगीन, अतः वो जो शरीर था वो बदल करके दूसरे शरीर में आ गया। तो वो कहता है अच्छा अभी मर गए तुम्हारे क्या लगते हैं, पत्नी से पूछा तो अब क्या लगता है उनको, तुम्हें देखते नहीं अब तो कोई संबंध नहीं, कल काल्पनिक एक संबंध है जैसे हमारे पति थे बस इतना है और कुछ, ऐसे ही पिता पुत्र भाई बंधु और सब समाज का समझना चाहिए, ये रियलिटी है, इस चीज का ज्ञान होने से अपने आप सुख और शांति आ जाए, और जब तक नहीं जानते हैं तब तक संसार के चक्र में कभी स्त्री कभी पुरुष, कभी गरीब कभी दरिद्र, कभी देवता कभी मनुष्य, कभी पशु कभी पक्षी, कभी कीट कभी पतंग, कभी पेड़ कभी बाघ भालू कभी कुछ, इस तरह से जानना। से ये बतलाओ ये शरीर के साथ में तुम्हारा संबंध है ना आत्मा के साथ में था? लोगों का संबंध तो शरीर ही से है, आत्मा के साथ में नहीं था। देखो पहले एक कबूतर रहता था और कबूतर को एक उसकी बड़ी प्रिया कबूतरी भी थी, दोनों को बच्चे हुए, अंडे लगाए, अंडे से छोटे छोटे फुटकते हुए बच्चे हैं, बहुत सुंदर सुंदर, अभी पंख भी नहीं होते। ये बच्चों को खाने के लिए कुछ चुनने के लिए दाना वो चले, एक वन में गए, एक नदी बह रही थी, सुंदर पास ही में एक बगीचा था, हरी हरी घासे कालीन जैसे बिछी हुई, जन सुंदर 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 पेड़ पौधे लगे, वो एक पेड़ की डाल पर दोनों बैठ गए और सुख से बातें करने लगे, जैसे पति और पत्नी मिलकर के बातें करते हैं बड़े प्रेम से, बीते हुए विवाह कैसा हुआ, बच्चे कैसे हुए, पुराने जमाने की सब बातें, बचपन की बातें याद आती हैं, किसी में एकदम रस भरी बातों में वो लग गए। थोड़ी देर के बाद में पत्नी ने देखा, कबूतरी ने देखा, सुंदर सुंदर चावल के कण कुछ बिखरे हुए हैं घासों के ऊपर, जीभ से पानी आ गया, बोली पति से, जो प्रियतम सुंदर सुंदर चावल के मोती जैसे कण हैं, इनको खुद भी खाएंगे, बच्चों को भी जाएंगे, चलिए हम लोग जाकर के दाना को चुने। पति ने कहा खबरदार मत जाना, इस जंगल में चावल के कण कहां से आए, यहां पर कोई बनिया है या खेती बाड़ी हो रही है, न कहां से आया, मत जाओ, कोई बहेलिया जाल लगाए हुए बैठे हैं, और तुम जाएगी जाल खाई जगह तुम पकड़ में आ जाएगी, तुम्हारा मांस खा देगा, बस खत्म हो जाएगी। तो ये आप पुरुषों को सब समय ऐसे ही बातें होती है, षड्यंत्र पुरुषों की आती है, इसलिए तुम ऐसा करो, मैं नहीं जाता, इसलिए कहा कि मैं तो जाती हूं, ये कह करके फुट उड़ी और जाकर के सुनने लगी दादा। और इतने में बहेलिए ने देखा जो आपको जाल में आ गई, बस खेच दिया उसके अंदर, अब तो गुलाब करने लगे, पुरुष भी डाल से नीचे उतर करके अब विलाप करने लगा। बहन जी से तू हमारी प्रिया, दोनों प्रेम से रहते थे, अब बच्चे को कौन देखेगा, मेरे से तो होगा नहीं, मैं तो बच्चों को देख नहीं सकता, इतना तुम मैया है उनकी, तुम देख, अब उससे पालन पोषण तो उनका होगा नहीं, मैं यदि मर जाता तुम जीवित रहती तो ये काम होगा। ऐसे बातचीत कर रहे थे और वो विलाप कर रहा था, वो एक जाल के अंदर में पड़ी हुई और एक बाहर, बस बहेलिए ने हंसा, बड़ा क्रूर था, बस वहीं से बाण मारा, बस कबूतर के छाती में लगा, वो भी फेर हो गई, और दोनों को पकड़ के हाथ हाथ करते और हंसते हुए दोनों को बांध करके पीठ पर लेकर, तो जो नहीं मरे हैं वो भी कल मरे हैं, अभी जो नवयुवक हैं, जो बच्चे हैं वो बड़े होंगे, जो युवक हैं वो वृद्ध होंगे, जो वृद्ध होंगे अपना शरीर बदल देंगे, ये तो ध्रुव निशि, यही गीता सिखलाती है, गीता में ऐसा सुंदर उपदेश है जो विश्व के किसी भी ग्रंथ में नहीं। गांधी जी इसी को बगल में सब समय रखते थे, इसे शांति मिलती है, जीवन में रहने की एक कला आती है, ये समझो जो मैं कृष्ण का दास, मैं अजर अमर हूं, इस आत्मा को हमको जानने दे। कैसे होगा, सरल सहज रूप में हो जाएगा, पैसा कमाना बहुत कठिन है, ये बात तो ठीक है, किंतु भगवान का भजन करना कठिन नहीं है, सहज है, घर में बैठे रहो, सब काम करते रहो और हरे कृष्ण 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे,
बस इसी से ही होगा, विश्वास रखो कि ये नाम ही भगवान, और सरल सहज रूप में उनका कभी स्मरण कर लिया, कभी कीर्तन कर लिया, और अपने घर को समझो जैसे ये प्रभु का है, मैं तो देखभाल करने के लिए एक नौकर की तरफ ही संसार में हूं, जो कुछ है सब दायित्व उनका है, जो कुछ करते हैं सब प्रभु के चरणों में निछावर करते हैं, हमारे जितने बच्चे हैं प्रभु के हैं, मैं भी प्रभु का हूं, हमारी पत्नी प्रभु की है, इस तरह से करने से ट्रस्टी बन करके रहने में, ट्रस्टी मैंने क्या सेवक, इसमें आनंद है, कभी शोक मोह नहीं होगा, उन्होंने बहुत प्रयत्न किया होगा, बच्चे ने भी बहुत प्रयत्न किया होगा जो मैया को रखने, कितनी उम्र थी 55 तो अभी तो कोई अधिक नहीं थी, अभी थोड़ी सी उम्र
थी।
और थोड़ा क्या ना,
दो साल तो हॉस्पिटल में।
आप लोग हरिनाम करेंगे, कई सबसे बड़ी उनकी शक्ति सेवा, उन्होंने जो सेवा किया उनका स्मरण करेंगे, उनको हरिनाम सुनाएंगे, हरे कृष्ण बैठ करके अकेले 5 मिनट भी बैठे, ये आपको शांति देगी, उनको भी शांति देगी और परिवार के सभी लोगों को
शांति।
हता तुरया जुहा पुत्रे तन्मयतया तनोभिनेदु तं सर्वभूतहृदय मुनिमानकोऽस्मि भक्त्यादिहीनाय पराधलक्ष्यै क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्यै कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्।
भगवान की कृपा से आज श्रीमद्भागवत का अंतिम दिवस चल रहा है। कल इसकी पूर्ण रूप से विधिवत समापन इसका होगा, आज ही कथा करीब करीब समाप्त होगी, कल उसकी बची खुची कुछ कुछ उपदेश हम लोग उसको ग्रहण करेंगे। अभी मैं श्रीमद्भागवत से उसका एक प्रसंग करने जा रहा था, अभी एक महोदय ने थोड़ा सा प्रश्न किया, मैं उसका उत्तर देकर के तब फिर उसको आरंभ करूंगा। उनका प्रश्न यह है कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। मैंने कल बतलाया था कि श्रीमद्भागवत का यह सार है, यह मंत्र महामंत्र है, इसकी क्या विशेषताएं हैं और इसमें हरे शब्द का क्या तात्पर्य, कृष्ण का और राम का क्या तात्पर्य है। पहले मैं इस विषय में यह बतलाना चाहता हूं कि बहुत से लोग हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 करते हैं, पहले राम को लेते हैं पीछे से कृष्ण को लेते हैं। विशेष करके गीता प्रेस के ऊपर जितने भी पुस्तकें और पत्रिकाएं हैं उसमें इसी तरह से दिया गया है। गीता प्रेस आधुनिक प्रेस है, अधिक से अधिक 100 वर्ष भी नहीं हुआ होगा, हम समझे 75-76 वर्ष हो गए इसकी स्थापना के। उन लोगों का यह भाव है कि पहले रामचंद्र जी का आविर्भाव हुआ था, जन्म हुआ था त्रेता में और द्वापर में उसके पीछे से कृष्ण हुए, इसके पहले क्यों नहीं राम का हो, पहले राम का नाम आना चाहिए, इसके बाद में कृष्ण का पीछे से आना चाहिए। युक्ति जहां तक है वहां तक तो ये ठीक है, यदि राम पहले आए हों और कृष्ण पीछे आए हों तो ऐसा कोई कारण में तो आपत्ति नहीं है। जिलेबी का कौन सा भाग पहले खाया जाए पहला है और जिलेबी का कौन सा भाग पिछला है, सालग्राम का कौन सा आगे है, मुख किधर है और पैर किधर है, यह सब विचार नहीं होता। तो भी कुछ विचार है, पहले तो ये भी बतलाया गया है कि राम पहले आए हैं कि कृष्ण आए हैं। वर्षों की गणना से जब वर्षों की गणना करते हैं तो उसमें देखते हैं कि पहला युग कौन सा है, सत्ययुग, वही से आरंभ, तो उसको इकाई मान लिया जाए। एक तो दूसरा युग होगा कौन सा, त्रेता ऐसे कहते हैं, तो एक के बाद में तीन कैसे आ गया, पहले होना चाहिए 1, 2, 3, 4, किंतु इसमें हम देखते हैं कि पहले सत्ययुग 1 और उसके बाद में त्रेता 3 और 2 माने द्वापर, ये तीसरा आ गया और चौथा हो गया कलयुग। तो 1, 2, 3, 4 ये ठीक है गणना के हिसाब से, अथवा 1, 3, 2, 4 कौन सा ठीक है, 1, 3, 2, 4
ये ठीक है, एक दो तीन चार होना चाहिए। पहले होना चाहिए एक सतयुग, इसके बाद आएगा दो पर जिसके हैं द्वापर, इसके बाद तीन तिंगुण, वो हो गया त्रेता, और इसके बाद हो गया कलयुग। बात ऐसी हुई कि सतयुग में अहिल्या जी गौतम की स्त्री थी। गौतम जी कुछ ऐसी तपस्या कर रहे थे जो इंद्र उस पर भड़क गया, सोचा कि हमारा ये स्वर्ग लेना चाहते, इसलिए सोचा कि किसी प्रकार से उसमें क्रोध उत्पन्न कर रहे हैं तो उसका तपस्या का फल गिर जाएगा तो वो स्वर्ग नहीं मिले, इसलिए वो एक रूप धारण करके गौतम जी का ही रात में आया। जबकि गौतम जी स्नान करने जा रहे थे गंगा, और उन्हीं का धारण करके और चंद्र को अपना साथी बना करके उसकी सहायता से उनके घर में घुस गया और गौतम जी का रूप बना लिया। चंद्र ने क्या किया, सहायता कैसे दिया, रात तो अभी आधी रात थी, किंतु चंद्र थोड़ा सा नीचे आ गया, झुक गया, अब इससे मालूम हुआ जैसे वो अब यह रात समाप्त होने वाली है, बस उनके घर में घुस गया। इतने में उनको पता चला, जब गए पता, अरे ये तो बहुत रात है, वहां से लौटे, इतने में देखा घबरा करके इंद्र वहां से उन्हीं का रूप बना करके आया, कि हमारा रूप क्यों बनाया इसने, जरूर कुछ गड़बड़ी है। इतने में चंद्र वहां से निकला, उसने मृगशाला लेकर के जाए थे, मृगशाला से मारा उनको और इंद्र को अभिसंपात किया। फिर अपनी पत्नी को के पास में गया, तुमने जानबूझ करके ऐसा तुमने अनाचार और स्वेच्छाचार क्यों की, वो समझ गई ये जानबूझ करके किया, हमारा रूप धारण करके गया उसको समझ करके भी ऐसा किया, जाओ तुम पाषाणी बन जाओ, बस वो पत्थर बन गए। अब तो रोने बिलबिलाने लगी, जैसे भी अपनी पत्नी को है रोने लगी, क्षमा मांगने लगी, उन्हें कहा अच्छा एक बात करो, अभी रामचंद्र जी का अवतार होने वाला है तो उस समय में तुम प्रेता में वो आएंगे और आकर के अपने चरणों की धूली देंगे, बस तुम तर जाएगी, फिर तुम हमारे पास में आ जाएगी। उन्हें अभी तो बहुत देर है, अभी सतयुग जाएगा, इसके बाद में द्वापर जाएगा, इसके बाद तो प्रेता आएगा तीसरा युग, तो ये बहुत दिन में कैसे भी समझू संभालू, अच्छा ये तुम्हारे लिए ऐसा कर देते हैं, इस बार आ जाएगा प्रेता, इसके बाद में आएगा द्वापर, इसलिए कुछ क्रम में परिवर्तन हुआ है। हमारा ये कहना है इसकी भी कोई जरूरत नहीं है, आराधना और उपासना होती है एक की, दो नौका में पैर रखने से या मन रखने से नहीं होता। यहां पर हरे कृष्ण मंत्र में राम का कहीं उल्लेख ही नहीं, यहां पर जो राम है वो राधा रमन राम है, राधा रमन हरि गोविंद जय, इसलिए राम माने राधा, तो रमयती राधा रमयती ती राम, एक उपास्य है। और जो यहां पर हरे है, जिनका महोदय ने अर्थ पूछा है, हरे के माने दो तात्पर्य होता है, एक हरि से हरे होता है और एक हरा से हरे होता है। विश्व ब्रह्मांड के चित्त को जो हरण करते हैं अपने रूप से गुण से लीला से, वो हरि कृष्ण है। हमारे पापों को जो हरण कर लेते हैं वो हरि है। एक बार हरि नाम उच्चारण किया है, हरि हरि, उसके समस्त पाप दूर हो जाएंगे। इसके बाद में दूसरा बार यदि हरि उच्चारण किया तो अपना रूप दर्शन दे करके और चित्त को हरण कर लेते हैं, ऐसे ये कौन है, ये हरि कृष्ण है। किंतु एक और भी कोई है जो विश्व ब्रह्मांड के चित्त को हरण करते हैं, उसके भी चित्त को हरण करने वाली श्रीमती राधिका जी हैं। कृष्ण सबको मोहित कर देते हैं किंतु खुद मोहित हो जाते हैं उनसे, वो राधिका जी हैं, इसलिए उनका नाम है हरा। कृष्ण के चित्त को हरण करने वाली होना होने से उनका नाम हो गया है हरा, इसलिए हरा का संबोधन में हो गया हरे। जैसे सीता आकार एकार हो जाता है, ऐसे यहां पर हरा का हो गया है हरे, अतः कृष्ण के चित्त को भी हरण करने वाले, इसलिए यहां पर जोड़ी है जुगल जोड़ी, हरे कृष्ण माने राधा कृष्ण और हरे राम, हरे माने राधिके, उनके साथ में बैठेंगे कौन, राधा राम, हरि को जाएगा, इसलिए यहां पर भी जोड़ी है। इसमें 8 जोड़ियां हैं और 16 नाम हैं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, ये 16 नाम है और उसमें 8 जोड़ियां हैं। ये जोड़ी क्या है? राधा कृष्ण की जुगल जोड़ी है। इसलिए शक्ति और शक्तिमान के साथ में यहां उपासना की बात आई है। इसलिए राधा रमण में राधा और कृष्ण और इधर में भी हरे कृष्ण राधा कृष्ण एक की उपासना है, इसमें दूसरा कुछ नहीं आया। एक व्यक्ति दोनों की उपासना राम की और कृष्ण की दोनों नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? राम ही तो कृष्ण है, कृष्ण ही तो राम है, सीता जी राधा जी हैं, राधा जी सीता जी हैं, फिर क्यों नहीं कर सकता? लीलाओं में वैशिष्ट है, एक में ऐश्वर्य है एक में माधुर्य है। इसलिए दोनों की उपासना एक साथ में नहीं होगी, यह रसगत एक दोष हो जाएगा, रसाभास हो जाएगा। इसलिए या तो राम की ही उपासना होगी, इसमें क्या मर्यादा, मर्यादा से जो भगवान की सेवा करना चाहता है वो सीता जी और राम जी का भजन करे, हाथ जोड़ करके सेवक की भांति, और सीता जी को प्रत्याग कर देते हैं, कब सीता जी हाथ जोड़ करके ठीक मैं बन जा रहा हूं, ये मर्यादा की बात है। रामचंद्र जी सब समय मर्यादा में बंधे होने के कारण में कोई भी डिसीजन लिया वो मर्यादा में रखकर लिया, कोई भी बात नहीं। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाय बरुप वचन न जाय। जिसको दशरथ ने कहा, रघु जी ने कहा, दिलीप ने कहा, रामचंद्र जी ने भी उसका पिताजी के आदेश के लिए मैं वन में चला जाऊंगा, मैं तो प्राण भी छोड़ सकता हूं। ये सब मर्यादाएं हैं। रामचंद्र जी मर्यादा में बंधे हुए हैं। जब कृष्ण ही मर्यादा के रूप में आते हैं तो वो सीताराम के रूप में उपास्य होते हैं, और जिस समय में माधुर्य भाव अधिक होता है, कृष्ण राधा जी के कुंज में गए हैं और किसी तरह से वो उनको कुछ मान हो गया, रामचंद्र जी ने सीता जी को घर से बाहर कर दिया और राधा जी क्या कहेंगी, हमारे कुंज से निकल जाओ, उधर में रहो, इधर में मत आना। कृष्ण इसको मानने के लिए बाद में गिड़गिड़ाते हैं, यह है मधुर लीलाएं। कृष्ण उस प्रेम के द्वारा वशीभूत हो गए, राम वशीभूत नहीं हो सकते, मर्यादा सब समय का। सीता जी रोते 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 सारा जीवन काटते हैं, वो न पिघलेंगे न कुछ होगा। और दूसरे तरफ में कृष्ण का माधुर्य इतना अधिक है कि प्रेम के वशीभूत हो जाते हैं, मर्यादा वहां पर निकाल करके रख देते हैं, फिर भी उसमें प्रेम की मर्यादा रहती, यही प्रेम की मर्यादा है। प्रेम की मर्यादा क्या है? राधा जी के चरणों की को पलटना ही, उनके आदेश को पालन करना ही, ये प्रेम की मर्यादा है। और वो मर्यादा है ऐश्वर्य की मर्यादा। इसलिए दोनों व्यक्ति, एक व्यक्ति जो इस विषय को नहीं जानता वो ऐसा कर सकता है जो दोनों उपास्य हैं, किंतु दो उपास्य नहीं होते, एक ही उपास्य होगा, वो राधा कृष्ण। इसलिए इस मंत्र में यही राधा कृष्ण की उपासना की बात कही गई है। श्रीमद् भागवत का सार इसलिए है, ये रास में क्या हुआ, जो लक्ष्मी जी को प्राप्त नहीं हुआ, कृष्ण ने अपने नित्य के समय में अपने दोनों हाथों को गोपियों के गले में डाल दिया, झूल गए, लक्ष्मी जी को यह सौभाग्य नहीं मिला। किस लिए झूल गए? कहीं हमें छोड़कर के फिर न चले जाएं, ये राज किया। पहली बार रास्ते निकल गई तो कृष्ण को वहां से अफसोस करते हुए पीछे पीछे उनको दौड़ना पड़ा। इसलिए राधा जी या गोपियां हमें छोड़कर के फिर विरह अवस्था में न डाल दें, इसलिए गले में दुख गया। लक्ष्मी जी को यह सौभाग्य नहीं है, सत्यभामा को नहीं है, सीता जी के लिए तो बहुत दूर की बात, वही राधा जी हैं, किंतु यहां पर मर्यादा है और वहां पर मर्यादा को तोड़ दिया है। इसलिए इस प्रकार का जो मधुर भाव से राधिका जी का दासी होकर के यदि कोई भजन करना चाहता है, ब्रज का भजन, तब तो इधर में आना पड़ेगा। और हरे कृष्ण का तात्पर्य वो हरे से राधा जी को लेना पड़ेगा और राम से राधा रमण कृष्ण, तब एक उपास्य होगा। इस तरह से इसके तो इसमें रास के समय में राधा जी कृष्ण को आकर्षण करती हैं, उनके चित्त को हरण कर लेती हैं, तो आपने देखा ही है भागवत में। इसलिए यह भागवत का विस्तार है, एक ही जगह नहीं कितनी जगह में ऐसा दिखा। अन्य आराधितो नूनन भगवान हरिश्वर, राधा जी की ऐसी आराधना है जो कृष्ण उनके वशीभूत हो जाते हैं, उनको एकांत में लेकर के अपने वस्तक्षल में बहन करके उनको ले जा रहे हैं, सब गोपियों के सामने ही सबको छोड़ दिया इनको लेकर के चले गए। तो इसमें आराधना की बात होती है, ये महामंत्र से राधा कृष्ण की ऐसी उत्तम आराधना होती है और एक निष्ठ भाव रहता है कि और किसी जीव में नहीं रहता। दूसरी बात, श्रीमद् भागवत में पढ़ते समय जब अब तो भागवत करके समाप्त हो रहा है, एक शंका उठती है, एक नहीं दो, दो शंकाएं होती हैं और अधिकांश लोग इससे तथ्य से अवगत नहीं। मैं इसका निराकरण कर देना मैं आवश्यक समझता हूं। पहली बात, परीक्षित महाराज 7 दिन तक भागवत सुने और उनको सांप ने काट दिया, मर गए। मरे कि नहीं अंत में? 7 दिन के बाद में भागवत का फल क्या हुआ? जो 7 दिन के बाद में सांप आकर के काट देता है वो मर गए। तो भागवत सुनने का यही फल हुआ, जो सांप काट दे वो मर गए। इसका तात्पर्य क्या? भागवत 7 दिन सुना, अंत में मर गए, विष उनको चढ़ गया, शरीर जल गया। और दूसरी बात, कृष्ण स्वयं भगवान हैं और एक बहेलिया ने उनको बाण मारा और मर गए। द्वारका लीला की समाप्ति में क्या होता है? एक बहेलिया बैठा था और ये पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे। बहेलिया कुछ आखेट करने के लिए आया, शिकार खाने के लिए, दूर से देखा, अरे ये तो मालूम होता कि हिरण का ये जीभ है और मुख है, बस वही से बाण मारा और उनको लग गया। इसके बाद में कृष्ण मर गए। फिर उनका वहीं पर श्राद्ध संस्कार, जो अंतिम संस्कार है, वो कर दिया। बहुत से लोग ऐसे तो यदि भगवान की ये दशा है तो जीवों की क्या दशा होगी? और ये कृष्ण भागवत नहीं सुने थे न कि कौन बोला भागवत? भागवत जिस कृष्ण का चरित्र ये भागवत है, जिसके सुनने से ऐसी परम गति हो जाती है, और कृष्ण को पहले ने बाल मारा वो मर गए, ये भी संदेह की बात। अब इसे को कैसे निराकरण किया? इस तरह से समझिए कि एक था नट, नट जानते हैं, रस्सी दोनों तरफ में एक तरफ बांस गाड़ करके दोनों रस्सी टांग देता है और उसके ऊपर में चढ़ करके घड़े ले लेता है दो चार, और रस्सी के ऊपर में एक बांस लेकर के ऐसे ऐसे नाचता है और तरह तरह की लीलाएं करता है। अपने बेटे को सुला दिया और लेकर के गला काट दिया। लोगों ने देखा जी, इसे अपने बेटे को गला काट दिया, रक्त निकल गया और छटपट छटपट करके मर गया। कहते बेटा इधर आ जाना, देखा जैसे उधर से चला रहा। कलकत्ते में एक मैसेबरिज्म का करने वाला इसी सरकार था, उसमें बहुत से लोग जानते हैं उसका नाम। कलकत्ता में उसने कहा, आज मिलिट्री एरिया में जहां पर कि गवर्नर बंगाल के थे और वहां के सबसे बड़े पुलिस के अफसर थे, बड़े बड़े अफसर लोग वहां पर एकत्रित हुए थे, उन्होंने कहा आज मुझे 5 मिनट का समय दिया जाए, एक खेल दिखाऊंगा। उन्होंने कहा अच्छा, बहुत मनोरंजन हो जाएगा खेल दिखाना। वो कहते ठीक, 4 बजे मैं आऊंगा, 4 बजे तक सब लोग आ जाए। मिलिट्री वाले सब टाइम के बड़े पंक्चुअल होते हैं, बस एकदम टाइम पर 4 बजे आ जाए। 4 बज गया, 4:15 बज गया, 4:30 बज गया, ठीक है 5 बजने को जब ठीक है, तो वो पान खाता हुआ मुस्कुराता हुआ सभा में घुसा। अब सब लोग बड़े उस पर बिगड़े हुए हैं, गवर्नर से लेकर के बड़े बड़े अफसर तक, पुलिस अफसर तक आएगा तो उसको हम कुछ डांटेंगे। तो आते ही वो तो मुस्कुराता हुआ आ रहा है, पान खाता हुआ, बेपरवाह। लोग उस पर बड़े बिगड़े, हम लोग 4 बजे से बैठे हुए हैं, आत्म को ज्ञान नहीं, जैसे इसमें गवर्नर बैठे हुए हैं और कौन कौन सा बैठे हुए हैं, तुम 5 बजे आया? 5 बजे? 5 बज गया। आप लोग घड़ी को देखिए, तो घड़ी देखा जी ठीक कांटे का 4 बजा हुआ है। एक मिनट में लेट नहीं कर सकता मैं, ठीक समय पर आप लोग यदि पहले आ जाए तो मैं क्या करूं, यह मेरा पहला खेल है। कितने लोगों को ऐसा कर, तो यदि नट ऐसा कर सकता है तो कृष्ण नहीं कर सकते? अब इसी को विश्वनाथ चतुर्वेदी ठाकुर जी ने टीका में दिया, जहां ये प्रसंग आया है, एक नट था, वो किशोर उम्र का था, उसकी स्त्री भी बड़ी किशोर उम्र की थी और उसके दो बेटे थे, एक 7 वर्ष का एक 9 वर्ष का, बड़े सुंदर सुकांत, बड़े बलिष्ठ। ये चारों आए महाराज के पास में, उन्होंने कहा कि हम लोग कुछ खेल दिखलाएंगे, यदि कृपा करके आप लोग दर्शन करें तो कुछ हमको पुरस्कार मिल जाएगा, हमारा चल जाएगा। तो ठीक है, सुंदर सुंदर रस्सी पचड़ करके नित्य इत्यादि किया और वो प्रसन्न हो गई रानी। रानी ने अपना गले का हार लेकर के दे दिया उसको, बड़ी प्रसन्न हो गई। उसने अपने बेटे के, ये दोनों खड़े थे, उन्होंने मैया हमको दे, मैया हमको दे, बस उसने गले से निकाला, किंतु दोनों बच्चे खींचने लगे, वो छोटा इधर बड़ा इधर। मैया ने कहा कि मैं क्या करूं, ये दोनों खींच रहे हैं, तो उसने बीच में लेकर के छोड़ दिया, जो जो होगा वो खींच लेगा अपने तरफ। तो खींचाकानी करने लगे, जब खींचाकानी इतने को क्रोध आ गया, तलवार निकाला, तो दूसरे ने तलवार निकाल ली, मैन ने तलवार थी दोनों की, और दोनों तलवार लेकर के एक साथ दोनों को वार किया, वो कट गया, वो कट गया और हार गिर गया। उस जो नट की स्त्री थी उसने कहा है हमारे दोनों बच्चे मर गए, दौड़ करके आई, तलवार उठाए, गला काट लिया। और इतने में वो जो नट था, अरे हमारे बच्चे और स्त्री भी मर गई, उसने भी तलवार उठाई और काट दिया, चारों ढेर हो गई। डांस प्रसन्नता मासूमी में एकदम बदल गई, शोक की लहर दौड़ गई, बड़ा दुख हुआ। राजा ने कहा जाए भाई उसको फेंकवा दो, उसको फेंकवा दिया गया। बड़े दुखी ये एक बड़ी प्रसन्नता के मनोरंजन के लिए हम कर रहे थे, चार पाइयों यहां पर मर गए, क्या किया। दूसरे दिन सवेरे एक घर में पत्र आया, महाराज हमने खेल जो दिखलाया था पहले तो वो हार आपने दिया, किंतु जो दूसरी खेल हमने दिखलाई उसका कुछ पुरस्कार नहीं मिला। आप ये मत सोचिए जो मैं मर गई और ये मर गए हैं हमारे साथ, हम लोग घर में आनंद खुशी राजी से पहुंचे हुए हैं, आपको जब भी ये विश्वास ना हो तो हमारे घर पर चले आइए। रानी को कहारी ये बच गए कैसे, ये तो मर गए थे। बस पति को साथ लिया और सभासदों को उसे घर पर गई, देखा जी पहले से उनको पता है जो आ रहे हैं, बस फूल की माला लेकर के उपहार लेकर के और एकदम हंसते हुए उनका अभिनंदन किया। जैसे अब हमको इसका ये जो है उसको मिलना चाहिए, हम लोग मरे नहीं तो खेल दिखलाया था, ये आंख को बांध दिया था हमने ऐसा किया। और जो प्रभु का प्रभु जो विश्व ब्रह्मांड की रचना करने वाला है, एक ऐसी लीला नहीं कर सकता। ये बहली वाला जो बात है, जो उसने बाण मारा है, ये सब क्या चीज है, ये माया है। ऐसी कोई चीज नहीं हुई, किंतु लोगों को भ्रमित करने के लिए, असुरों को मोहित करने के लिए और भक्तों को आनंदित करने के लिए ऐसी लीला के माध्यम से अपने परिकरों के साथ में साथ चले गए वो बैकुंठ में वृंदावन में। किंतु ये लीला केवल दिखलाने के लिए रही, लोगों को मोहित करने के लिए, वास्तविक में ऐसा नहीं हुआ। जो काली हद में गिर करके मर नहीं सकता, एक बहलिए के बारे से मर जाएगा, सांप ने कहां कहां यहां यहां सब काटा, जो आग खा गया मरा नहीं, जो गोवर्धन पर्वत को भीष्म पितामह के बाणों से नहीं मरे, कर्ण के बाणों से नहीं मरे, अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से नहीं मरे, और उनको एक एक तीर उसमें थोड़ा सा कुछ विष लग गया है और उसे मर जाएंगे। अरे उनका तो शरीर और शरीर और उनकी आत्मा दोनों एक चीज है, सच्चिदानंद, वो तो कभी मर ही नहीं सकते हैं। हाँ, अपने मरे हुए गुरु पुत्रों को लौटा दिया, मरे हुए को, फिर वो मर जाएंगे, भगवान कभी मरते नहीं है, ये उनकी लीला थी। इस प्रकार से लोगों को देखा करके मोहित कर दिया, क्योंकि वो ऐसे ही नरक लीला करते हैं। दूसरी बात, वो मैं से मैं जन्मती, तो दूसरी बात परीक्षित महाराज का क्या हुआ। परीक्षित महाराज जी भागवत सुन रहे थे, 7 दिन अब हो गया, हमारे इन्होंने सुखदेव गोस्वामी ने कहा जी अब तुमको भागवत सुना दिया, तुम अमर हो गया है? तुम्हारा जीवन कृतार्थ हो गया, जो भागवत सुनता है उसका ये जो फल है मैं तुमको बतलाया है, मैंने पहले बतलाया धर्म प्रोज्जित कई तो वो अत्र परमो निर्मण वैद्यम वास्तवम वस्तु शिवदम तात्रो उन्मीलनम श्रीमद भागवते महामुनि कृते किं वापरे ईश्वर सद्यवरुद्धते अत्र सुत्री कृति भी तत्खणा। यदि भागवत का कोई श्रवण करता है जिसको व्यास जी ने बतलाया है, जिसमें मुक्ति तक की भी उन्होंने काट करके खत्म कर दिया, मुक्ति भी नहीं चाहिए तो कृष्ण का प्रेम चाहिए, इस व्यास देव के द्वारा ये श्रीमद् भागवत भी बनाया है। इसके श्रवण मात्र से ही कैसे श्रवण करे, श्रद्धापूर्वक यदि श्रवण कोई करता है तत्क्षणात् कृष्ण उसके वशीभूत हो जाते हैं, कभी हृदय से निकलते नहीं। दूसरी बात एक और कहा, श्रीमद् भागवतम प्रमाण अमलम जद वैष्णवानाम परम, जद वैष्णवानाम प्रिय जस्मिन पारमहंसम अमलम ज्ञानम परम गीयते जत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितम नैष्कर्मम आविष्कृते तत्मन सुपर पठन विचारण करो भक्त्या विमुच्यन नरः। क्या तात्पर्य, श्रीमद् भागवत एक अमल प्रमाण ग्रंथ है और पुराण में कुछ गलती हो सकती है, एकदम विमल प्रमाण है। ये महाभारत का अर्थ है, वेदों का अर्थ है, अथयं ब्रह्मसूत्राणां भारतार्थ विनायण है, गायत्री भाष्य असौ गायत्री का भाष्य है और वेदों का परपक्व ये फल है, वेद रूपी कल्पतरु का ऐसा श्रीमद् भागवत है। इसको पान करने वाला व्यक्ति कभी भी मर नहीं सकता, अजर अमर नित्य शाश्वत होकर के कृष्ण की सेवा में पहुंच जाता है। तत्क्षणात् विमुच्यते, विमुच्यते मैंने क्या, मनुष्य मुक्ति से ऊपर कर विशेष रूप से मुक्त होकर के कृष्ण के चरणों में प्रेम पा लेता है, कभी उसकी मृत्यु नहीं होती। ये फल बतलाया और एक फल बतलाया, जस्या वै सूय माणायाम कृष्ण परम पुरुषे भक्ति रूप पद्यते पुंसा शोक मोह भयापह। व्यास जी ने भक्ति योग के समाधि में कृष्ण की लीलाओं का दर्शन किया और जब मनुष्य के कल्याण के लिए उसको भागवत के रूप में लिपिबद्ध किया और अपने बेटे सुखदेव गोस्वामी को पढ़ाया, उन्होंने जगत में इसका प्रचार किया। तो उन्होंने जिस भागवत को लिखा वो भागवत माने भगवान ही है। उसके श्रवण का फल क्या है, जस्या वै सूय, वही माने निश्चित रूप में, कोई संदेह की बात मत करना, ये इधर उधर फल जाएगा नहीं, जो कहते हैं वही होगा। क्या है, जस्या वै श्रूयमाणायाम पुरुषे, जो साक्षात पुरुष कौन है, एक ही चांस कला पुरुष कृष्ण तु भगवान, कृष्ण ही स्वयं भगवान, जो राधा जी के साथ में है वो स्वयं भगवान है, यहां पर राधा जी नहीं है वो साक्षात भगवान नहीं है, द्वारका में रहने वाले द्वारकाधीश हैं, किंतु राधा जी और ब्रज की गोपियों के साथ रहने वाले यही स्वयं भगवान है। ये साक्षात जो परम पुरुष है इनकी आराधना हो जाती है। जैसे भाई सुई मायणाम कृष्ण परम पुरुष भक्ति उपपद्यते पुंसान शोक मोह भय, उसमें शोक मोह भय दूर हो जाता है, जगत से ऊपर उठ जाता है। ऐसा जबकि फल ये बतलाया गया और परीक्षित महाराज को सांप काट दिया वो मर गए, तो सात दिन उन्होंने सुना नहीं, मैं सात दिन सुना और उन्होंने उनके गुरु जी ने कहा ये फल तुमको जरूर होगा, तो उनको फल कहां प्राप्त हुआ। ऐसा हुआ, सातवां दिन हो गया, भागवत समाप्त हो गया और उनके गुरु जी चले गए, उन्होंने गुरु जी की प्रदक्षिणा की, भागवत की प्रदक्षिणा की और अब समाधिस्थ होने वाले थे। इतने में उनकी मैया ने कहा, मैं मुहमती नारीमती मैं ठीक से समझ नहीं सकी, आपने जो सुखदेव गोस्वामी से सुना सरल सहज भाषा में हमको बतला दी। उसका सात पाठ पढ़ी उन्होंने, सर्व सहज रूप में उन्होंने बतलाया, गोपियों ने कृष्ण की जो आराधना की जिस भाव से वही आराधना सबसे श्रेष्ठ है। आप भी कृष्ण को अपना परम प्रिय प्रियतम समझें, कृष्ण को अपना प्रियतम समझें, गोपियों के प्राण बल्लभ ही तुम्हारे प्राण बल्लभ ऐसा समझो। इसी के लिए दो कहानियां थी, समय अनुसार में हम लोग उसको बतलाएंगे। तो अब वो जब कथा हो गई तो उन्होंने अपने शरीर से मन को निकाल लिया ध्यानस्थ होकर के, और मन से आत्मा को निकाल लिया और आत्मा को लेकर के कहां ले गए, राधा कृष्ण के चरणों में गोलोक वृंदावन में पहुंचा दिया। अब शरीर में प्राण नहीं रहा, मन नहीं रहा, मन में से भी मन रहा भी तो उसमें से आत्मा को निकाल लिया और लेकर के कहां स्थापित कर दिया, राधा कृष्ण के चरणों में वृंदावन में उन्होंने स्थापित कर दिया। अब शरीर में यह शरीर क्या रहा, मरा हुआ जैसा है। इधर में क्या होता है, कश्यप नाम का एक ब्राह्मण, बहुत मंत्रवीद, उसको धनवंतरी ही कहिए, वो आ रहा था। परिचित सभा में जाएंगे, सांप काटेगा मैं उनको ठीक कर दूंगा और मुहमांगण हमको पुरस्कार मिलेगा। जड़ी बूटियों को अपने दोनों थैलियों में भर करके एक एक से उत्तम औषधियां लेकर के आ रहा। इतने में वो जो काल तक्षक था वो भी कला मुस्टंड भयंकर विकराल मूर्ति धारण करके आ रहा था। अब वो सांप होने वाला था, सांप होकर के वहां पर सूक्ष्म रूप में वहां पर पहुंचेगा, काटेगा। उसने देखा कि ये महात्मा जी कहां जा रहे हैं, ये कश्यप जी, ये तो बहुत मंत्र तंत्रविद है। उसे पूछा, जी आप कहां जा रहे हैं महात्मा? मैं जा रहा परीक्षित की सभा में। किस लिए जा रहे हैं? तो जा रहा है इसलिए कि परीक्षित महाराज जी को आज सांप काटने वाला है, अब समय हो गया है, अब थोड़ी देर में वो आएगा, मैं भी पहुंचता हूं, उनको सांप काटेगा, मैं उनको जीवित कर दूंगा। और आने दो, तुम लौट जा। नहीं भाई, हमको लौटना नहीं, हमको तो ठीक करना है। तो ठीक कर देगा कहां? तो मैं ही वही तक्षक हूं, अभी ऐसा रूप धारण करके जा रहा हूं और मैं उनको काटूंगा। तू एक बात कर, ये वट का विशाल वृक्ष है, इसको काटो तुम, मैं काटता हूं और ये जो करके खाक हो जाएगा, इसकी नीचे की मूल तक नहीं रहेगी और तुम इसको जीवित कर दो।
यहां तक इसकी मूल भी जल गई।
उसने कहा, अब तुम बचाओ इस पेड़ को। उसने कहा, ठीक है, जड़ी निकाली और ले करके उसको घोट दिया, उसको घोट करके दवाई को प्रस्तुत किया और साथ साथ में मंत्र के द्वारा उसकी जड़ पर लेकर के उसको फेंक दिया। मंत्र भी पढ़ा और औषध भी दे दी, फेंक दिया उसके ऊपर, कटोरी में पीस करके रखा और वहीं पर लेकर के मार दिया। मूल तक जल गई थी और देने के साथ ही साथ में नई नई कोपलें आई और साथ ही साथ मिनटों में एक विशाल बरगद का पेड़ हो गया, उसमें फल फूल सब कुछ लग गए। अरे ये तो सचमुच में जीवित कर देगा। उसने सोने के थाल में अस्थियां भर करके उसके सामने हाजिर कर दिया। विचार करने लगे, मैं जाऊं कि नहीं जाऊं? कहता, तुम किस लिए जाएगा? तुमको ये रुपया तो दे रहा हूं मैं, अर्थ दे रहा हूं, तुम लौट जाओ। नहीं भाई, मैंने मंत्र तो ये हमारा मंत्र नष्ट हो जाएगा, हमको स्वार्थी नहीं होना चाहिए। देखा जो ये मानेगा नहीं, तो उसने एक थाल में और उससे भी कीमती रत्न लेकर के भर करके उसके सामने दे दिया। अब तो मुख से लार टपक गया। कहे, भाई ये आती हुई लक्ष्मी को ठुकराना नहीं चाहिए। बस उसने दोनों को भर लिए और वहीं से लौट गया और तब वहां पर काल पहुंचा। छोटा सा एक फूल में छोटा सा एक सर्प होकर के उसमें प्रवेश किया और सभा स्थल में कोई फूल ले करके जा रहा होगा, बस उसमें प्रवेश करके वहां पर पहुंचा। और जब वहां पर फूल जब गया, विकराल सर्प का धारण करके बड़ी जोर से मारा, ये तो थे नहीं, ये कहां थे? ये तो गोलोक वैकुंठ में पहुंच गए हैं, उनका शरीर केवल जड़ शरीर था। उसको उन्होंने जब काटा, साथ ही साथ में जला। किंतु एक बात और है, एक तो ये तर्क से कहा गया, तर्क नहीं बल्कि शास्त्र में ऐसा लिखा। इसके दो पहलू हैं। पहला पहलू तो ये, भक्त का शरीर दो प्रकार का होता है, एक साधक का शरीर अभी मिट्टी का होता है, चित यलपावक गगन समीरा पंचरचित यह अधम समीरा। साधारण साधु का शरीर जब तक कि भाव की उत्पत्ति नहीं हुई है तब तक तो जड़ शरीर है, जड़ मन है, किंतु अब शुद्ध हो गया, उसमें जीवात्मा का अधिष्ठान है। किंतु जो भक्त सिद्ध हो गए हैं, कैसे सिद्ध? जिसको कृष्ण ने जन्म से रक्षा की, जिसको बचाया, वो परीक्षित महाराज जी हैं, जिन्होंने कृष्ण ने अपनी गोदी में खिलाया हो, जिसको किसको खिलाया? परीक्षित महाराज जी को अपनी गोदी में खिलाया, अर्जुन ने खिलाया हो अपने नाती को, ऐसा आदमी कभी मरेगा? उसका शरीर कैसा होगा जो कृष्ण के सिर पर चढ़ करके ऐसे खिलाए हैं और उसका पैर, परीक्षित जी का पैर कहां आया? कृष्ण के सिर पर ऐसे ऐसे खिला रहे हैं और बड़ा मुस्कुराता हुआ नाच रहा है उनके सिर पर, ऐसा व्यक्ति मर सकता है? मरेगा। उसका शरीर कैसा है? वो भी चिन्मय ही है। परीक्षित महाराज जी सुखदेव गोस्वामी से कम नहीं है बल्कि अधिक हैं। सुखदेव गोस्वामी को इतना सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआ जो कृष्ण की गोदी में खेले हो, और इनको ऐसा सुयोग हुआ, और इनका समस्त वंश कृष्ण से संबंधित। कोई इनकी दादी जी है वो कृष्ण की बहन है, कौन? सुभद्रा जी। सुभद्रा जी कौन है? कृष्ण की अपनी खास बहन है। अर्जुन जी कौन है? कृष्ण के कौन है? बहनोई है। और कृष्ण साले हैं अर्जुन के। और कुंती मैया कौन है? कृष्ण जी की बुआ है, जिसका इतना परिवार घनिष्ठ कृष्ण के साथ में, वो आदमी मर जाएगा कल उस पर अपना कोई प्रभाव दिखा सकता है नहीं, साधक साधारण नहीं थे वो, कृष्ण के परिकर थे। कृष्ण की जो लीलाएं होती हैं उनके परिकरों के साथ में होती है, इसलिए साधारण आदमी नहीं थे, इसलिए काल उनको स्पर्श नहीं कर सकता, सांप भी स्पर्श नहीं कर सकता। वो ठीक जैसे भगवान की लीला हुई थी ऐसी लीला मैसमेरेजर के रूप में होकर के, ऐसी जोग मायने ऐसी कर करके एक लीला कर दी जो लोग देखें ऐसा, किंतु वास्तविक में सशरीर ही चले गए, मरे नहीं। इस प्रकार से लीलाओं का सामंजस्य करके श्रवण करना चाहिए। जब तक कि अनुभव पुरुष से भागवत का हम श्रवण नहीं करेंगे ये सब लीलाएं समझ में नहीं आती। इसलिए आप लोग कभी भी मत सोचे जो परीक्षित महाराज जी को सांप काट दिया है भागवत सुनने पर भी और वो मर गए, अपराध हो जाएगा। कृष्ण को उसने बाण मारा कृष्ण मर गए, ये सुनने से भी अपराध होगा। गुरु के शरीर को क्या समझना चाहिए? चिन्मय समझना चाहिए, उनको भगवान के समान समझना चाहिए, उनको ऐसे ही आदर करना चाहिए। माया समय पार करके कृष्ण की भक्ति दे रहे हैं, इसलिए उनको भगवत स्वरूप ही समझना चाहिए। शास्त्र में ऐसा कहा गया, साक्षात हरितेन इत्यादि बहुत जगह कहा गया। गुरु को आप मेरा ही स्वरूप समझो, भगवान का स्वरूप समझो। वैष्णव मानो ये इस जाति के हैं, उस जाति के ऐसा मत समझो। हमारे गुरु जी ब्राह्मण कुल में आए, और दूसरा दबे जबान ने कहा कि हमारे गुरु जी तो भाई तो दूसरे कुल में आए, ऐसा मत सोचो। काल से और ये संसार से जाति से ऊपर वैष्णव होते हैं, उनको मत देखो जैसे व्यास जी शूद्र कुल में हुए, नारद जी किस कुल में हुए? शूद्र कुल में, ऐसा मत देखो। सूरज पूरब दशा से निकलता है तो पूरब उसकी जननी नहीं है, मैया नहीं है, वो तो सूर्य कृपा करके उधर से निकल रहे हैं। इसी तरह से वैष्णवों के लिए भी समझना चाहिए, इस तरह से प्रत्येक वैष्णव को सम्मान देना चाहिए, किंतु वैष्णव भी वैष्णव होना चाहिए, किसी तरह का अपराध ना हो। इस प्रकार से चलते हुए हम भगवान का आश्रय लेकर के क्रमशः भक्ति पथ पर आरूढ़ होंगे, तब भागवत का फल जैसा है वैसा मिलेगा। मैं पुनः हमारे अरविंद लोचन जी और यहां के सभा के जो देखने वाले व्यवस्थापक लोग हैं सदस्य वर्ग सबको मैं आंतरिक धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। मैं तो यही चाहूंगा कि प्रत्येक वर्ष ऐसे ही यहां पर अनुष्ठान हो, इसी लोभ से इसी बहाने से हम लोग भी इंद्रप्रस्थ में आ जाए। वैसे हम लोग वृंदावन में रह करके पर संतुष्ट हैं, कहीं आने जाने की इच्छा नहीं होती है, तो भी गुरु जी का ये एक उपदेश है कि भाई थोड़ा सा प्रचार होना चाहिए। इसे प्रचार के माध्यम से हम लोग आते हैं, यदि एक भी जीव भगवान के तरफ में इसे हरि कथा को सुन करके मुड़ गया तो हम समझेंगे ये भागवत हमारी सफल हुई, और इत्यादि नहीं। इसलिए मैं आपको विशेष धन्यवाद देता हूं, और हम लोग प्रति वर्ष आएंगे कुछ दिनों के लिए, आपको भागवत की कथाएं और भी रसिक भाव में हम लोग सुनाने की चेष्टा करेंगे। इसलिए अरविंद लोचन जी बहुत श्रद्धा के पात्र हैं, इन्होंने ऐसा आयोजन किया, इसमें यहां के जो सदस्य वर्ग हैं उन लोगों ने बहुत सहयोग किया, और अरविंद जी बहुत पहले से ही हम लोगों को वृंदावन मथुरा पहुंच करके बहुत आग्रह करके ले आए, इसलिए ये श्रद्धा के ही पात्र हैं। इसलिए मैं सबको प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि सब लोगों को कृष्ण के चरणों में प्रीति दे, और किसी की प्रीति सांसारिक वस्तु में नहीं। इसलिए मैं यही प्रार्थना करके आज का वक्तव्य समाप्त करता हूं। श्रीमान शुभानंद ब्रह्मचारी जी आप लोगों को कुछ भागवत कथा और जो बाकी है सुनाएंगे, और इसके बाद में कल पूर्णाहुति के दिन में पूर्णाहु होम इत्यादि के लिए आप सभी लोग पधारेंगे, पूर्णाहुति देकर के हम सब भागवत की समाप्ति करेंगे, और यहां पर शायद कोई महोत्सव इत्यादि होगा बचा हुआ प्रसाद श्रीमद भागवत का आप लोग ग्रहण करेंगे और शेष वंशा कल्पतरुभ्य कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो
गिरिधारी श्याम बनवारी मोर तस्मै श्री गुरवे नमः वंशा कल्पतरुभ्य कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नम्ने गौरधीशे गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो भक्ताभिहीनापराधलक्ष्यै चित्ताश्च कामादितरङ्गमध्यै कृपामयीं त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नुमस्ते चरणारविन्दम् यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽभिनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि सौभाग्य की बात है कि यहां पर श्रीमद् भागवत प्रवचन 10 दिन तक हुआ, कुछ भी विघ्न नहीं हुआ। शुभ कामों में कभी कभी विघ्न हो जाया करते हैं, किंतु निर्विघ्न रूप से संपन्न हुआ। ये भगवान की अद्भुत कृपा है, गुरु जी की भी कृपा है। यहां के धर्मशाला के व्यवस्थापक लोगों की बहुत ही इसमें सहानुभूति रही, सब प्रकार से सहयोग उन्होंने किया। हमारे अरविंद दास जी ने भी बहुत परिश्रम किया। सबसे बधाई के पात्र हैं हमारे कीर्तन करने वाले ब्रह्मचारी लोग। गला बैठ गया है तभी बड़े प्रेम से आसपास के महलों को उन्होंने प्रेम से कीर्तन करते करते नचा दिया। यही प्रचार है भागवत पीछे बहुत लोगों का सहयोग रहा। ये लोग कोई आलस्य नहीं किया, दोपहर में निकल रहे हैं, शाम को निकल रहे हैं, रात तक निकल रहे हैं, 12 बजे तक प्रस्तुत हैं अपनी सेवा के लिए। ऐसा ही होना चाहिए, हमारे ब्रह्मचारी लोग ऐसे ही रहे, एकदम समर्पित आत्मा हो। इन ब्रह्मचारियों से बहुत सी चीजें सीखने की है, ये आप लोग सीखेंगे कैसे भजन किया जाता है। तो इनको भी विशेष रूप से कृष्ण से और भागवत से प्रार्थना है कि इन पर कृपा कर। विशेष करके यदि श्रोता नहीं आए तो कथा सुनेगा कौन? कथा में श्रोता जो है इसकी बड़ी महिमा है। जो पाठक सच्चा होगा वो पहले श्रोता को प्रणाम करके तब बैठे, ये भी एक भगवत स्वरूप ही है। भगवत स्वरूप किस मायने में? भगवान की स्मृति दिलाते हैं। यदि श्रोता उपयुक्त न हो तो वक्ता शुद्ध रूप में ये हरि कथा नहीं कर सकता। शुद्ध श्रोताओं को देख करके उनके हृदय में कृष्ण की उद्दीपना होती है, और श्रोता अच्छे नहीं है उद्दीपना नहीं होती। इसलिए श्रोताओं को भी प्रणाम है और इस स्थान को भी पुनः पुनः प्रणाम है जहां पर यह हरि कथा हो रही है। ये स्थान पवित्र है, यहां पर शुद्ध भक्त लोग यहां पर उपस्थित होकर के इतने दिनों तक कीर्तन किया शुद्ध रूप से। अब डिस्टर्ब बीच में नहीं होनी चाहिए, इसलिए श्रोताओं को पुनः पुनः नमस्कार है। मैं क्या
ये सुखदेव गोस्वामी ने ही ऐसा कहा। मणि मन में परीक्षित महाराज जी को प्रणाम करके कथा आरंभ करते हैं। किसी किसी माने में श्रोतालक भी बड़े हैं, यहां पर सुख गोस्वामी की कथा बोल रहे हैं और जहां पर बड़े बड़े ऋषि नारद जी बैठे हैं, व्यास जी बैठे हैं, सुखदेव गोस्वामी गति पर बैठ करके बोल रहे हैं, तो श्रोता जो है उनमें नारद जी बैठे हैं, पराशर बैठे हैं, गौतम विश्वामित्र हरि कभी हवि अंतरिक्ष चतुर्सन स्वाम बैठे हैं, दाम्भिकता नहीं कर सकते ये सुखदेव गोस्वामी जी उनको प्रणाम न करें, उनकी चरण की धूली सिर पर लेकर के तब वो कथा उनके आदेश से करें, और यदि ऐसा नहीं करेंगे तो भागवत वक्ता होने के अधिकारी नहीं। इसलिए श्रोता को ऐसा होना चाहिए और वक्ता को भी अभी बतलाया, यदि कोई परमार्थ चाहता है सचमुच में तो बतलाया है ये कैसा होना चाहिए। शतांग प्रसंगम विरज संविदौ भवंत रित करण रसायन कथा तद्योषनाथ आशु अपवर्ग वर्तमनी सदारति भक्ति अनुक्रमिष्यति। और एक स्थान स्थिता ज्ञाने प्रयास मदपाश्र नमंत एव जीवंत सन्मुखरितां भवदीय वार्ता। स्थाने स्थिता तनु वां मनोभी प्रायशो अजित, अजित जो कृष्ण है उनको भी जीत दिया जा सकता है। कैसे? जहां पर शुद्ध भक्तों के मुख से भगवान की कथाएं निकल गई, अपने आप निकल गई। कैसे भक्तों के हृदय से ये शुद्ध कथाएं निकलती हैं? जिसका चित्त एकमात्र कृष्ण को छोड़ करके, राधा जी को छोड़ करके और नहीं कहीं है। यदि आंशिक रूप में कहीं विषय पर उसका चित्त भी है, कहीं एक किसी जगह मन उसका चिंतामणि के प्रति लग गया, चिंतामणि समझ रहे हैं ना, अपनी प्रतिष्ठा के लिए लग गया, कहीं कुछ लग गया तो बुंद की तरफ में चिपक जाएगा, कृष्ण की तरफ में नहीं आएगा। इसलिए इस विषय में भी सावधान हम लोगों को होना है। इसलिए चिंतामणि को प्रणाम कर लिया जाए, चिंतामणि जयति सोम गुरु गुरु में। इसलिए कहते हैं स्थाने स्थिता तन वांग मनोभी, चित्त को एक स्थान में लगाए। स्थान कौन सा है? राधा और कृष्ण के चरण कमल ये स्थान है, इसमें लगाए। और स्थाने स्थिता चाहे गृहस्थ हैं चाहे त्यागी हैं, अपने घर में स्थित जहां है वहीं स्थाने स्थिता, जहां हरि कथा हो रही है, जहां संत लोग हैं वहां पर स्थित होकर के। स्थाने स्थिता वृंदावने स्थिता, वृंदावन में स्थित होकर के चित्त को मन में वृंदावन में ले जाओ, सब जगह से समीट लो, है ना, मकड़ा है ना या मकड़ी, उसको कहीं ऊपर से छोड़ दो तो ऊपर से एक धागा लेकर के नीचे उतर जाती है, गिरती नहीं है, और फिर अपने अंदर में समीट लेती है। कछुआ अपने पैरों को और अपने हाथों को से जब चलता है, अब जरूरत होते तो क्या करता है, अपनी समस्त सारी चेष्टाओं को एनर्जी को जहां तक आसक्ति का प्रश्न है सबको लेकर के सीमित लो, और सीमित करके स्थान स्थिता वृंदावन में राधा कृष्ण के चरणों में एकदम स्थित करो। जहां भागवत की कथा हो रही है स्थिता स्थान, उस स्थान को प्रणाम करो, उस श्रोताओं को जो हरि कथा सुनने के लिए भागवत आ रहे हैं उनको प्रणाम। प्रणाम मैंने क्या प्रणाम महाशय जी महाप्रणाम, ऐसा नहीं, प्रकृष्ट रूप से नमन को प्रणाम कहते हैं। प्रकृष्ट रूपेण नमति प्रणमति, प्रकृष्ट मैंने क्या अपने संसार हृदय की जितनी कामना वासनाएं हैं वो सबको सीमित कर, सबको हटाकर राधा कृष्ण के चरणों में लगाओ, इसकी चेष्टा करनी चाहिए। तो प्रणम मैंने
प्रकृष्ट रूप से न माने अहंकार को दूर कर, माने अहंकार, न माने निषेध। अहंकार जितने पर, मैं बहुत पढ़ा लिखा हूं, मैं बहुत सुंदर हूं, मैं बहुत सुंदरी, मैं बहुत बुद्धिमान हूं, मैं बहुत कार्य कुशल हूं, मैं बहुत कर्मी हूं, मैं बहुत बड़ा भारी भक्त हूं, इन अभिमानों को मां न निषेध का दूर कर अपने को कृष्ण के चरणों में अर्पित करना, ये प्रणाम का अर्थ है। हम लोग का प्रणाम ठीक ठीक होता नहीं, जिस दिन ठीक हो जाएगा कृष्ण की कृपा हो जाएगी। तो स्थाने स्थिता तनुवांग मनोभी, उस स्थान पर भी इतने स्थान बताए ना जहां पर हरि कथा हो रही है, जहां पर वैष्णव है, चाहे गृहस्थ है तो गृहस्थ में रहकर, त्यागी है तो त्यागी रह करके, जहां हरि कथा हो रही उस स्थान को, जहां पर वृंदावन है वहां पर राधा कृष्ण के चरणों में, इसके बहुत से अर्थ। तो इस प्रकार से स्थित होकर के तन से, मन से, वचन से, तन माने ये शरीर से उसको प्रणाम करो। पुरुष लोग हैं ऐसा प्रणाम करें साष्टांग, स्त्रियां हैं पंचांग के रूप में उनको प्रणाम करो। किसको? कथा के स्थान को, कथा वाचक को और कथा के श्रोता को। मुख से तो ये, मन से तो प्रणाम करें, शरीर से और मन से उसका चिंतन करते हुए प्रणाम करें कि आपको प्रणाम है। भव सागर को पार करने के लिए इससे कोई सहज सुविधा नहीं है, कोई औषधि नहीं, इसलिए उनको प्रणाम करो मन ही मन में। और तनु बात बोली के द्वारा आज हमारा कल्याण हो गया इस हरि कथा के सुनने, आप धन्य हैं। और कथा का जो मूल जो उद्देश्य है, कौन उद्देश्य है कथा का, उद्देश्य कौन है, किसका प्रतिपादन इस कथा में हुआ है? कृष्ण का प्रतिपादन हुआ है, राधा जी का प्रतिपादन हुआ है। बल्कि इन दोनों से राधा कृष्ण का जो प्रेम है, प्रेम श्रीमद्भागवत का ये मूल प्रयोजन तत्व है। प्रेम चाहिए, यदि हृदय में राधा कृष्ण के प्रति प्रेम नहीं हुआ और राधा कृष्ण मिले तो कंस जैसा उनको मारने की चेष्टा होगी। इसलिए प्रेम हृदय में हो, जिसको हृदय में प्रेम है वही कृष्ण का सच्चा भक्त है। इसलिए उस प्रेम को बलिहारी है, उनको प्रणाम करता हूं, ये भागवत का यही प्रतिपाद्य विषय है। इस तरह से सबको प्रणाम करें, तन से, मन से, वचन से। जो कृष्ण अधिक हैं, ब्रह्म इत्यादि के ध्यान में भी नहीं आते हैं, वो सहज रूप में पराजित होकर के हमारे हृदय में प्रवेश करते हैं और कभी नहीं निकले। ये भागवत की कथा का ये सार मर्म है। सबसे पहले उन्होंने कथा आरंभ करने पर नारद जी और व्यास जी का चरित्र बतलाया। नारद जी ने अपना चरित्र बताया, कैसे शूद्र के घर में जन्मे, कैसे चार ऋषियों का संग हुआ, कैसे उन्होंने भागवत का चार महीने तक श्रवण किया, कैसे उनके चरित्रों का अनुगमन किया उन्होंने, और कैसे उनको मंत्र मिला, और मंत्र मिलने पर जब चार महीने का समाप्त हो गया तो वो लोग जब जाने लगे, तो वो मंत्र दे करके जब जाने लगे तो इनकी मैया ने अपने बेटे को नारद जी को गोदी में ले लिया और छोड़ती नहीं, कहीं चला न जाए। नारद जी ने प्रार्थना, प्रभो इसकी व्यवस्था आप नहीं कर सकते। दूसरे दिन एक सप ने आकर उससे मैया को काट दिया, मैया मर गई। मैया मर जाने के बाद में उसको वैसे ही छोड़ दिया और जंगल की तरफ में दौड़े। उन्होंने समझा ये मैया हमारी शरीर को छोड़ दिया, मरी नहीं, ये मरा हुआ शरीर क्या है, मिट्टी है, इसलिए उसको छोड़ करके चले गए। और कठोर साधना की, कुछ दिनों के बाद में भगवान प्रकट हो गए, उनको दर्शन दिया, कृतकृत्य हो गए। इसलिए फिर व्यास जी की बातें बतलाई, व्यास जी को भक्ति योग का उपदेश दिया। परीक्षित महाराज जी को सुखदेव गोस्वामी ने हरि कथा सुनाई, नारद जी ने किसको सुनाया, युधिष्ठिर महाराज जी, और सुख गोस्वामी ने किसको सुनाया, सौनक आदि ऋषियों को, और सौनक ने सुनाया जनमेजय ऋषि को। इसी तरह से परंपरा चली आ रही है गुरु शिष्य का संबंध, किस लिए,
बिन गुरु भवन भी तरय नकोर। जो जो ब्रिंज शंकर सम होई, कोई शंकर के समान हो जाए, ब्रह्मा के समान हो जाए, किंतु भाई बिना गुरु के भव सागर को कोई नहीं पार कर सकता। भगवान की कथा तो बहुत है, वही कहने का अधिकारी है। इसलिए शिष्य बिना हम लोगों को जो कुछ मिला है, हम लोगों के गुरु की कृपा से मिला है। उन्हीं की कृपा से आज 10 लोग हमारी कथाओं को सुनते हैं, आदर करते हैं। हम आदरणीय नहीं है, गुरु जी आदरणीय। इसलिए जिसका गुरु शुद्ध होगा वो तो भगवान को पाएगा। भगवान अजित होने पर भी उसके जय हो जाएंगे, उसके अधीन हो जाएंगे। और जिसका खूंटा बहुत तेज नहीं है, खूंटा माने गुरु, कर्मी है, ज्ञानी है, संसार में मत्त है, विषयी है, उनके लिए भाई ये बहुत कठिन है। उसके लिए भाव सागर नहीं कर सकते। इससे श्रीमद्भागवत के जितने भी वक्ता और श्रोता हैं उनको देखिए, वक्ता ने वो लोग शिष्य को विशिष्ट देकर बना करके उनको क्या दिया, गुरु बना दिया, उनको भागवत की जितना तत्व ज्ञान है सब दिया। इसलिए आप लोग भी चेष्टा करेंगे, जिसको कभी गुरुकरण किया है बहुत अच्छा है, किंतु ये विचार करेंगे ये शुद्ध भगवत भक्त है कि नहीं, संसार से परम विरक्त है या नहीं, संसार में कुछ लालसा तो नहीं है, ये सब चीजों को ध्यान में रखें, नहीं तो कृष्ण प्रेम परम नहीं होता। इसलिए जैसे कुल गुरु एक होता है, कुल गुरु माने क्या, वो अनादिकाल से देते चल रहे हैं, उनके वंश के लड़के और शिष्य के वंश के लड़के उनको वो मंत्र दे देते हैं, ये कुल गुरु कहलाता है। किंतु जो गुरु खुद ही नहीं भजन करता है, जिसको कोई तत्व ज्ञान नहीं, तो दूसरों को क्या दे सकता है। हमारे कुल गुरु थे, हमारे पिताजी को मैया को उनके पिताजी ने हरिनाम दीक्षा दी। तो इसके बाद में मुझको बुलाया गया, जैसे आप उनके लड़के से, तुम हमारे लड़के, उनसे दीक्षा लो। मैंने गुरु जी के लड़के से पूछा कि बीड़ी पीते हैं, हां पीता है, बहुत अच्छा। आप गायत्री मंत्र जानते हैं, जरा बोलिए। तो बोल नहीं सकते, अच्छा करो। नहीं, मैंने उनसे कहा, पूछा, आपसे नहीं पूछ रहा, मैं उनसे पूछा। तो मैंने कहा कि आपको गुरु करके क्या करूंगा। अच्छा ये बतलाइए कि आप लोग जो दीक्षा देते हैं, तो गुरु शिष्य किस लिए दीक्षित करते हैं आप लोग? अच्छा किस लिए आदमी गुरु करता है ये बतलाइए, किस लिए? तो ये रामचंद्र जी ने गुरु किया था, कृष्ण ने गुरु किया था, इसलिए गुरु किया जाता है। मैंने नहीं, ये नहीं, किस लिए गुरु किया जाता है, गुरु करने का क्या तात्पर्य, ये बतलाइए। बतला नहीं सकते। हमने कहा जी ऐसे गुरु को हमारा बहुत दूर से नमस्कार है, हमको तो गुरु ऐसा चाहिए कान के माध्यम से, शब्द के माध्यम से हमारे हृदय को निर्मल कर सके और कृष्ण के चरणों में हमको बैठा दे, उनकी भक्ति हमको दिला दे, कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ नहीं जाने, गोपियों जैसा भाव हो, सखाओं जैसा भाव हो, नंद जसोदा जैसा भाव हो, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं दिया। मैंने उनसे नहीं दिया। तो जो लोग भवसागर से पार खुद हुए हैं वो तो दूसरों को पार कराएंगे, और जो भवसागर में उसके कीचड़ में गड़े हुए हैं वो क्या करेंगे, इसे खूब सोच समझ करके ये सब विचार करेंगे। बाजार में जाते हैं, पासी में एक दुकान है, उसमें मिट्टी के बर्तन हैं। मैं गया मिट्टी का एक बर्तन खरीदने के लिए, वहां पर एक लकड़ी रखी थी, लकड़ी को उठा करके उस बर्तन को देखा, पसंद तो आया तो बजाया, उसमें तक खन खन किया। तो मैंने क्या किया, खन खन करेगा तो क्या कर देंगे, ले लेंगे ना, रख देंगे, क्यों, ये टूटी फूटी है। अरे दो पैसे का माल लेते हो और बजा करके देते हो, और अपने जीवन को सर्वस्व के लिए समर्पण कर देना, उसमें विचार नहीं करेंगे, विचार नहीं हम करेंगे, जीवन किसको समर्पण करना है, ये देखो विचार करके देखना चाहिए। दूसरा उठाया हड़, दूसरा हड़िया उठाई, बजाय वो भी खन खन किया,
कर्मी ज्ञानी योगी तपस्वियों को देकर के ये खन खन करने वाले इसे भगवान नहीं मिलेंगे। जिसका कोई प्रिंसिपल नहीं है, जिसका कोई नियम नहीं है, जिसकी कोई परंपरा नहीं है, जिसमें कृष्ण भजन की कोई बात नहीं है, ऐसे लोग भाव सागर से उद्धार नहीं कर सकते। इसे तीसरी उठाई और देखा बजाय तो देखा जो ठन ठन कर रही, बस उसको पैसा दे दो और ले लो। तो ये आप लोग विचार करेंगे, जल्दीबाजी का कुछ नहीं है, जो जो आया एक दिन कहा कुछ और बस उसके पीछे दौड़ पड़े, ऐसा नहीं। परीक्षा करें, एक वर्ष, दो वर्ष, तीन वर्ष, जब ये शुद्ध उनका चल, एक दो दिन में मालूम नहीं पड़ेगा। रंगी हुए सियाल होते हैं ना, एक रंगे हुए सियाल एक दिन देकर के रंगा हुआ रहेगा, वर्षा आएगी भीग जाएगा, वो रंग गिर जाएगा तो वो मालूम पड़ जाएगा। इसलिए ये सब चीजों को विचार करके उनका चरित्र ठीक है कि नहीं, भगवान में भक्ति है कि नहीं, खुद भजन करते हैं कि नहीं, इनको संसार से विरक्ति और वैराग्य है कि नहीं, ये सब विचार करके अपना जीवन उनके चरणों का। मैं भी इसी तरह से 12-13 वर्ष तक घूमता रहा, बहुत मैंने देखा, बहुत लोगों से संपर्क किया, हर बार और कहां कहां दक्षिण में मैं गया। हमारे मन का पसंद का कोई नहीं, गुरु जी के पास में गया, अपने आप आकर्षित की तरफ में मैं आकर्षित हो गया। तो इस तरह से ये जीवन और ये भागवत का ये विचार ये है, शुद्ध रूप में हम परमात्मा की तरफ में बढ़ना चाहते हैं तो शुद्ध भक्तों का संग होना अनिवार्य है। बिना भगवत भक्तों के संग के भक्ति धर्म में नहीं बढ़ सकते। बंदर होकर के भी भक्तों का संग किया तो देखो कहां पहुंच गया हनुमान। राम के ऊपर में जो डाल है ना, जहां राम बैठते हैं उसके ऊपर में बैठता है, और पहले यदि राम को जय देना होगा तो जय हनुमान जी की जय दे करके तब फिर राम की जय देंगे। रामचंद्र जी एक कहीं पत्थर फेंकेंगे तो वो डूब जाएगा पानी में, और हनुमान फेंकेंगे जय श्री राम कह करके तो क्या होगा, उसे पुल बन जाएगा। इसी तरह से भावना होनी चाहिए, शुद्ध भक्ति का विचार हो, इस तरह से हम लोग भक्ति में बढ़ेंगे, अन्यथा नहीं बढ़ सकते। इसलिए ये भागवत अब समाप्त हो रहा है, अभी आह्वान होने वाला है, आप लोग धीरे 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 ये ठाकुर जी को पुष्पांजलि देकर के, भागवत की पुष्पांजलि देते हुए इधर से निकल करके फिर जहां पर बैठे हैं वहीं पर बैठ जाएंगे। धीरे धीरे शोर भी न हो, उधर में हवन का कार्य भी होता रहेगा, और आप लोग भी कम से कम एक एक आहुति उसमें ठाकुर जी को राधा कृष्ण को देंगे। गौर प्रेमानंदे, यहां पर अभी आरती होगी, आरती करके तब पुष्पांजलि, तब फिर हवन होगा, अभी हवन मत करना।
Hare Krishna, Krishna Krishna. चिंतन करे तो आवागमन का जो रास्ता जीवन फिर उसको जन्म नहीं लेना, उसको किसी चीज के अभाव और दुख नहीं होगा, उसको बुरा भी नहीं होना पड़ेगा, रोग भी नहीं जाएगा, कुछ भी नहीं जाएगा, किसी जन्म में ही शांति पाएगा और उसको सुख मालूम पड़ेगा और पर जगत के लिए भी निश्चित रूप में आवागमन बंद होकर के अंत में सचिदानंद सुख पाएगा। इसकी गारंटी शास्त्र प्रकार में एक्सपेरिमेंट के द्वारा बड़े बड़े राजा लोग, धनी लोग, विद्वान लोग, पढ़े लिखे लोग, जिन लोगों ने भगवान का हरण नहीं किया, इतिहास कहता है, हमारा शास्त्र कहता है, उन लोगों को पेड़ बनना पड़ा, मनुष्य जन उनको मिला भगवान का हरण, उनको कोई कारण नहीं देगा कौन किसको, जिस समय सबसे जो धनी थे अपने समय के उदय की उनके दो लड़के पढ़े लिखे इतने सुंदर के बीच में उनके समय कोई सुंदर नहीं, तो वो खाने पीने में मस्त थे और उनको जो भी कहा किसी के लिए भी अंत में तेल होकर के लिए इंद्रजी सूखा बन करके आए, देवता मैंने मनुष्य से भी ऊपर रूप में जाकर के ही भगवान का भजन नहीं किया, गुरु का अनादर कर दिया, उनको सूखा बनना पड़ा। फिर ब्रह्मांड की कृपा से किसी प्रकार से बहुत दिनों के बाद में कठिन सूखा के विषय ठीक होता, कोई पत्थर हो जाता है अहिल्या की पाषाण बन गई ना, पाषाण चेतनता ही उनकी गुप्त हो। इसी तरह में जिन जानवरों ने भी भगवान का नाम लिया, जैसे हनुमान जी परीक्षा है जानवरों का, जटाई पर वृद्ध है, दुराचारी अजामिल, इन लोगों ने भगवान का नाम स्मरण किया और सहज रूप में बिना किसी साधन भजन के भगवान को पा लिया, इसलिए भगवान का भजन करना चाहिए। ये जीवन अंतिम जीवन या पहला जीवन नहीं है। इसलिए इस जीवन में चेष्टा होनी चाहिए प्रत्येक जीव को माने और न माने, वो भगवान का पार्ट एंड पार्सल है, एक पत्थर है, उसको उछाल दीजिए, जोर से फेंक दीजिए, यदि उसको आधार नहीं मिलता है तो कहां आएगा, यदि उसको कहीं पेड़ पर या छत पर आधार मिल गया तो वहां टिक जाएगा, जितनी भी ऊंचाई में फेंके आएगा वो पृथ्वी पर, क्यों, धुएं को जलाओ, आग जलाओ, छत पर जलाओ, छत पर चढ़कर तो पृथ्वी की तरफ आएगा या आकाश में जाएगा, क्यों, पृथ्वी को क्या नहीं खींच लेती, बैलून जलाओ, बैलून में खड़ा फाड़ दो पंप और उसको छोड़ दो तो क्या करेगा,
क्यों जाएगा ऊपर पृथ्वी की तरफ में, उसको कल ही पृथ्वी खेलती, इसका एक थ्योरी है। जो जिस चीज का पार्ट है उसका होम पार्ट को अपनी तरफ में खींचता है और वहीं पर उसकी स्थिरता होती है। जब तक कि कोई बाधा है तब तक तो उसे मिल नहीं पाता। जैसे पत्थर है फेंका, पेड़ पर अटक गया, ये एक बाधा है। यदि पेड़ नहीं होता या पेड़ पर अटक नहीं जाता तो क्या होता? क्योंकि पृथ्वी का पार्ट ये पत्थर है, ढेला है। किंतु जो हवा है पृथ्वी का पार्ट नहीं है। एक न एक दिन जो अटका हुआ पत्थर है किसी न किसी प्रकार से पेड़ गिर जाने पर क्या होगा? आ जाएगा। हवा जो बैलून में भरी गई है वो आकाश में नहीं जाएगी, क्योंकि आकाश में रहती है, वो मिट्टी में नहीं आएगी। आग जो है जाओ में जलाओ वो ऊपर क्यों जाती है? क्यों? कारण क्या? सूर्य आग का मूल आधार इस पृथ्वी पर है, इसे आग उसमें मिलेगी। अच्छा, एक लोटा पानी यहां गिरा दो कहां जाएगा? कहां जाएगा? जल ठारो ठारो, थोड़ा तुम्हारा बहुत आगे बढ़ रहा है। कहां जाएगा पानी? यदि ढलान है तो नाली में जाएगा। ये नाली का पानी कहां जाएगा? बड़ी नाली। बड़ी नाली का पानी कहां जाएगा? है अब वो नाला कहां जाएगा? है जमुना में जाएगा। ये दिल्ली है ना, इधर कहीं ना कहीं से निकल करके दिल्ली में वो जमुना। जमुना जी कहां जाएंगी? प्रयाग में गंगा से मिल जाएगी। और इनका पानी पूरा ले करके यहाँ का वो लोटा वाला पानी भी सब मिलते वो समुद्र में मिल जाएगा। फिर क्या होगा? समुद्र से सूरज अपने तरफ में खींच करके ऊपर ले जाएगा अलक्षित रूप में, और फिर वहां ले जाकर के बरसाएगा, और बरस करके पानी कहां आया? फिर वापस आया, और फिर किसी न किसी रूप में सागर में मिलेगा। ये साइक्लिक ऑर्डर से चल रहा है, इसलिए पानी का आधार समुद्र है। किसी न किसी रूप में वो जाएगा। मान लिया पानी आपने डाला और वो सूख गया तो समुद्र में कैसे जाएगा? वेपर होकर के ऊपर उठा और वहां से पानी के रूप में बदल करके फिर चला आएगा समुद्र में। वो अपने आधार में जब तक नहीं मिलेगा तब तक उसकी स्थिरता नहीं। कहीं न कहीं से एक वर्ष में, दस वर्ष में, लाख वर्ष में वो पानी वहां पर होगा, नहीं तो उसकी स्थिरता नहीं। इसी तरह से आग है, अपने मूल आधार में जब तक नहीं मिलेगी वो स्थिर नहीं रह सकती। एक थ्योरी है। इसी तरह से जीव भगवान का अंश है, जब तक नहीं उसे मिलता तब तक वो बेचैन हुआ, कुछ अभाव और घुटन भीतर में और क्लेश अनुभव करता हुआ उन चीज को पूरा करने के लिए विश्व ब्रह्मांड में चारों तरफ में घूमता है। यहां तक कि मनुष्य, पक्षी, कीट, पतंग, देवता, गधा, घोड़ा, ये सब किसी न किसी रूप में वो प्रवेश करके सुख और शांति खोजता है, और इसीलिए उसको कहीं भी तृप्ति नहीं होती। पृथ्वी का जितना सुख है सब सुख को एकत्र कर दी, पति पत्नी का, पुत्र माता का, धन का, रावण को इसमें किसी चीज की कमी नहीं थी। रावण की कितनी पत्नियां थी? खूबसूरत खूबसूरत, सोने की लंका बनी हुई थी, वहां पर भी मदिरा चलती थी, जो कुछ होना चाहिए वहां पर था, सुखी नहीं था, बड़ा अशांत चित्त था, डर उसको था कि हमको कोई मार लगा दे। हिरण्यकश्यपु को सभी प्रकार के वरदान थे, वज्र का शरीर, नित्य किशोर रूप रहेगा उसका, और विश्व में उसको कोई भी हरा नहीं सकता, ब्रह्मांड तक जितना भी लोक है सब उसके अधीन रहेगा, उसको कोई मार ही नहीं सकता, सब कुछ उसको उपलब्ध था। किंतु एक क्षण नहीं लगा उसको मरते,
सुखी नहीं रह सका। अंत में वो भगवान के पास में जाकर के जय विजय के रूप में जाकर के भगवान के पास में पहुंचा, तब उसकी स्थिरता आ गई। उसी प्रकार से हम लोग संसार में घूमते हुए करोड़ों करोड़ों जन्म तक कहीं सुख और शांति नहीं मिलेगी, कुछ न कुछ कमी जरूर है। अंत में यदि भगवान से किसी प्रकार से मिलने वाला कोई व्यक्ति मिल गया तो उसको स्थिर करा देगा, विश्वास करा देगा जो हमको भगवान में मिलने पर ही हमको शांति मिलेगी। पूछा कि भाई भगवान से मिलेंगे कैसे, तो बताएगा जी इस तरीके से मैंने भगवान को पाया और इसी तरीका तुम लोग कर करके भगवान के पास में। श्रद्धालु जीव ने कहा जी मैं आपको अपनी आत्मा को अर्पण करता हूं, अब आप हमको बतलाइए मुझको क्या करना चाहिए, मैं जरूर करूंगा। तब वो शिष्य बनता है, तब गुरु के पास में जिज्ञासा करता है एक्सपर्ट के पास में। वो कहते हैं कि देखो सतयुग में एक साधन भगवान को पाने के लिए, त्रेता में एक प्रकार का साधन, द्वापर में एक प्रकार का साधन और कलयुग में एक प्रकार का साधन। इस कलयुग में भगवान को पाने के लिए बस एक ही रास्ता है, क्या? भगवान का नाम लिया जाए। क्यों? भगवान का नाम जहां होता है भगवान वहां पर उपस्थित हो जाते हैं। सर्वव्यापी है, जैसे आग है, यहां पर आग है कि नहीं, हमारे शरीर में आग है कि नहीं, है जठराग, इसके अंदर में आग है कहां, बिजली के रूप में, इसके अंदर में आग है नहीं ना, नहीं, इसके अंदर में आग है, बिना आग के बन नहीं सकती। पांचों में से कोई एलिमेंट, पांचों एलिमेंट इसमें रहना चाहिए, इसके बिना बन नहीं सकते। इसको खूब रूप से घर्षण किया जाए, ये पत्थर में आग नहीं दिखती, एक पत्थर से दूसरे पत्थर पर मार छिनकारी निकलती और कुछ नहीं, हाथ को ऐसे रगड़ो, 15 मिनट खूब जोर से रगड़ो तो देखो पकौड़े उठाए, और जरा रगड़ो निश्चित रूप में आग निकल आए। ऐसी कोई जगत में चीज नहीं है जो आग नहीं है, किंतु ठीक ऐसे ही ऐसा भी समय कोई भी स्थान नहीं है, कोई पात्र नहीं है, कोई चीज नहीं है जिसके अंदर में प्रभु नहीं है, भगवान में सत्य है।